मजीद भाई, इजिप्ट के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज जो हुई है, वहां पे डिगिंग हो रही थी सकारा के एरिया में, विच इज द सिटी ऑफ मेम्फिस. तो वहां पे कैन यू इमेजिन 2500 ईयर्स ओल्ड वहां पे कॉफिन्स निकले हैं. और वो कह रहे हैं जी कि वो बिल्कुल इंटैक्ट कंडीशन में है, और अभी तक इनको कभी ऐसा लगा नहीं कि इनको कभी खोला गया था, क्योंकि वो एक्सकवेशंस जो हो रही हैं वहाँ पे, वो अब वहाँ पे शुरू हुई हैं. तो उनका वहाँ पे वो जो कर रहे हैं एक्सकवेशन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि हमें लगता है कि हमें और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं. इससे पहले भी इस इलाके में जो दूसरी इससे पहले जो एक्सकवेशन चल रही थी, 4400 ईयर ओल्ड वहाँ पे एक टूम जो है वो उन्होंने डिस्कवर किया था, और एक लायन था, और बहुत सारे एनिमल्स जो थे उनके वहाँ पे वो जो है ममीज जो हैं वो उनको मिली थी. तो वो कह रहे हैं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग आज जो है वहां पे है डिस्कवरी है. बीबीसी की आज की एक रिपोर्ट है जी, कि इंडिया के अंदर एक जो है दिल्ली के पास एक जगह पे गांव में, उसमें एक ग्रैंड माँ है, 86 इयर्स ओल्ड थी वो. 86 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर थी. तो वो बैठी हुई थी अपने घर के बाहर, दूध वाले का इंतजार कर रही थी. तो वो दूध वाला आया नहीं, तो एक और लड़का आ गया वहां पे. तो उसने कहा कि आपका दूध वाला नहीं आ रहा है, मैं आपको लेके जाता हूं जहां से आपको दूध मिल जाएगा. तो वो वहां पे उसको लेकर गया और उसने उसको रेप किया. तो अब वहां से जो खेतों में से जो लोग गुजर रहे थे, तो उन्होंने जब वो चीख पुकार सुनी तो उन्होंने वो लेके गए. उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी ग्रैंड मदर की उम्र की है. एंड ही इज इन हिज 30s. और ये जो ग्रैंड मदर है, शी इज 86 ईयर्स ओल्ड, 550 ईयर्स कोई के कुछ ऐसे 40 या 50 साल बड़ी है इससे. बहरहाल जी, दिल्ली पुलिस ने इसको जो है अब लड़के को अरेस्ट कर लिया है, और इसको पकड़ के जो है वो लेकर चले गए हैं. द वायर की आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये उनके स्टाफ रिपोर्टर की, और स्टाफ रिपोर्टर का इन्होंने नाम नहीं लिखा है, मगर बड़ी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये जो SCO की जो मीटिंग चल रही है मॉस्को के अंदर, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके अंदर हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है जयशंकर साहब इंडिया के, वो और जो है चाइना से वांग यी साहब, वो मुलाकात करने वाले हैं फेस टू फेस वहां पे, साइड लाइन्स ऑफ SCO, ताकि ये जो लद्दाख का जो है मामला, इसको खत्म किया जा सके. अब ये जो आज की जो वायर की स्टोरी है, ये बता रही है, वो कह रही है कि अहेड ऑफ दीज टॉक्स, ये ऐसे लग रहा है कि ये दिस ट्रेजेक्ट्री कैन गो एनीवेयर. अच्छा, उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि क्योंकि चाइना ये मानने को तैयार नहीं है कि वो जो है इंडियन इलाके में आया है, जबकि इंडिया ये कहता है कि तुम हमारे इलाके में आए हो. तो जिस वक्त तक चाइना पीछे नहीं जाएगा और इंडिया ये बात मानेगा नहीं कि हमारा इलाका में वापस दो, टॉक्स तो आगे चलेंगी नहीं, क्योंकि जो बेजिंग है वो तो इस बात को मान नहीं रहा है. तो वो कह रहे हैं कि ऐसा ना होए कि वो टॉक्स जो है इतनी फ्लेयर हो जाए तो फिर वो किसी तरफ भी जा सकती हैं, और इलाके के लिए काफी खतरा हो सकता है, वहां काफी खतरा हो सकता है,
क्योंकि जो है ना ये चाइना और इंडिया का जो अगर खुदा ना खास्ता उनकी वॉर छिड़ जाती है, तो ये इट इज नॉट ओनली टू कंट्रीज, मगर दे आर
रीजन
वन ऑफ द टू बिगेस्ट इकोनॉमीज है. तो उसका जो रिपल इफेक्ट होगा दुनिया भर में, वो ज्यादा,
और इमीडिएट नेबर्स बहुत सफर करेंगे ना.
एग्जैक्टली,
स्पेशली स्मॉलर कंट्रीज, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के ऊपर भी डेफिनेटली इफेक्ट आएगा,
असर आएगा.
तो अफगानिस्तान है, सो दिस होल रीजन विल बी. तो ये आज उनकी बड़ी आई ओपनर है. अब मैं इसमें बहुत ज्यादा चीजें रिवील नहीं करना चाह रही, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें, बट दिस इज समथिंग वेरी सीरियस जो उन्होंने लिखा है उसके अंदर, आप पढ़ सकते हैं इसको. पाकिस्तान पेट्रोलियम ने जी आज अनाउंस किया है कि बलोचिस्तान में जो कलात का एरिया है, वहां पे उनको बहुत ज्यादा जबरदस्त डिस्कवरी मिली है गैस की. और आपको पता ही है कि पाकिस्तान पिछले 70 ईयर से जो है बड़ा ये फाइट कर रहा है, ये जो शॉर्टेज हो जाती है एनर्जी की. और पाकिस्तान की, मजद भाई, मैं आज जो ये रिपोर्ट पढ़ रही थी, 15 बिलियन से लेके $16 बिलियन एनुअली अपनी जो एनर्जी की जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए पाकिस्तान यूज करता है, और इसलिए उसके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो कभी जो हैं वो अच्छे लेवल पे नहीं आते. तो वो कह रहे हैं कि अब ये जो डिस्कवरी हुई है, इस डिस्कवरी में वो कह रहे हैं कि हमको मिलेगी तकरीबन दे हैव डिस्कवर्ड दैट दे आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक जो है वो इट्स गोइंग टू जो हमारी वो कहते हैं लोकल जो हमारी है वो दैट इज 3.7 बिलियन क्यूबिक फीट की जो हमारी नीड है, और ये जो रिजर्व्स हैं ये ट्रिलियंस में भी जा सकते हैं. वो कहते हैं अभी तक हमारे पास पूरे मैप्स नहीं आए हैं, अभी हम पूरी तरह इसको मैपिंग करेंगे और वो करेंगे, बट दिस इज अ ह्यूज ह्यूज रिजर्व जो कि हमें ये आया है. तो अब जो एक एनर्जी के क्राइसिस हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें थोड़ी सी इनको अगर रिलीफ मिलेगी अगर ये हो जाती है. चाइना की जो COVID-19 की जो वही जो कैनसाइनो बायोलॉजिक्स जो लिमिटेड है उनकी जो है वो थर्ड स्टेज में एंटर हो गई है पाकिस्तान में. चाइना के अंदर में लोगों ने बहुत सारे, चाइना में तो इतनी आवाज नहीं उठाई, दूसरी जगहों पे लोगों ने काफी आवाज उठाई है. उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो है आपके ऑलरेडी केसेस कम हैं तो फिर ये कैनसाइनो वाले थर्ड फेज की टेस्टिंग क्यों करें. उन्होंने कहा जी ये चीज हम रोकेंगे नहीं, ये चलती रहेगी, चाहे केसेस पाकिस्तान में कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, जो भी हम चलाते रहेंगे इसको. इसके अलावा जी होंडुरस के अंदर जो है थाउजेंड्स ऑफ जो लोग थे वो आज जमा थे स्ट्रीट्स के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि एक तो जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, हम घरों में बैठे हुए हैं, कहीं हम बाहर नहीं निकल सकते और हमें कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिल रही है. तो आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था होंडुरस के अंदर, वहां पे चल रहा था. अच्छा जी, वी आर राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज. और रिया चक्रवर्ती जो हैं उन्होंने आज अपने जो भी कोई वो कन्फेस किए थे कि मेरा भाई ड्रग्स प्रोवाइड करता था सुशांत सिंह राजपूत और ये, उस सबसे वो रिट्रैक्ट आज कर गई हैं. वो कहते हैं कि ये जो नारकोटिक्स बोर्ड वाले हैं उन्होंने मेरे पे जोर दिया था ये बयान देने के लिए, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. और कंगना रनावत की आप काफी खबर सुना चुके हैं काफी डिटेल में. इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि उन्होंने कहा कि जो मेरी बिल्डिंग जिसमें मैं रह रही हूं, ये वो जो महाराष्ट्र के जो लॉ मेकर हैं शरद पवार, वो कहते हैं उस शरद पवार के बिजनेस पार्टनर की ये बिल्डिंग है. तो मैं आंसर शरद पवार से पूछना चाहती हूं कि ये कैसे आपने होने दिया, कैसे मुंबई पुलिस आई और कैसे महाराष्ट्र में ये सारा कुछ हो रहा है आपकी नाक के पीछे नीचे. तो शरद पवार साहब ने कहा है कि मुंबई पुलिस जो भी करती है ठीक करती है, उनको कोई टिप मिला होगा कि कुछ गलत है तो उसने किया, तो ये दैट्स ओके. और जनाब हमें जरा वो है, अफसोस है थोड़ा, हमारे बाबर आजम बहुत अरसे से T20 के किंग बने हुए थे, हमेशा टॉप पे रहते थे, तो अब वो नंबर 2 पे आ गए हैं क्योंकि इंग्लैंड के जो डेविड मेलन हैं 33 ईयर्स के, ये जो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी जो रीसेंट मैचेस हुए थे उसकी वजह से अब जो T20 रैंकिंग्स हैं उसमें वो नंबर 1 पे चले गए हैं. तो इनके जो पॉइंट्स हैं तकरीबन वो हैं, और इनकी एवरेज जो है 48.71% है, और इनके जो नंबर हैं वो 877 हैं पॉइंट्स, और बाबर आजम जो हैं उनके 869 हैं. एरन फिंच अपनी तीसरी पोजीशन पे हैं और विराट कोहली जो है 9th पोजीशन में आउट ऑफ द 10. तो T20 में नंबर 2 पे आ गए हैं बाबर आजम.
All the best to him. We'll take it. Shahzad ji, thank you so much. Bahut bahut shukriya aapka.
Thank you much.
And bakhya ki khabrein, jaise main hamesha kehta hu, kal sham ko 5:15 baje phir aapki khidmat mein hazir honge, aur uske baad Pakistan, Hindustan aur duniya bhar ki taza tareen khabrein Shahzad ji aapke liye leke aayenge. कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम दे दें,
और जब तक आप जो है उसमें जो जब तक ब्रेक होती है उसमें आप अपनी लिपस्टिक वगैरह भी लगा
लिपस्टिक वगैरह लगा लें और वापस आएंगे. 4166201778 हमारा फोन नंबर है.
आप CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ बहुत ही आसानी से अपने घर से विदेश पैसे भेज सकते हैं, वो भी $0 ट्रांसफर फी पर. आप पैसे ऑनलाइन या CIBC के मोबाइल ऐप से भेज सकते हैं. आज ही अपना पहला ट्रांसफर करें और पाए $50. अधिक जानकारी के लिए CIBC.com/transfer पर जाएं.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने. उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे.
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है. अपने हक जानने ले या सलाह लैण ले आज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000.
काल टायर. सर्दियों के लिए गाड़ियों के टायर तब्दील करने हो या नए टायर खरीदने हो तो कार टायर पर जाकर रजिस्टर करें और रेडियो 770 AM का हवाला देने पर 4 नए टायरों की इंस्टॉलेशन बिल्कुल मुफ्त करवाएं. ये पेशकश 15 अक्टूबर तक महदूद है. KALTIRE.com
ਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ।
ਹਾਂ, ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਤੇ। ਕਾਲ 905-874-7171।
اونٹیریو کے سکولوں کو بحفاظت دوبارہ کھولنے میں ہر ایک کا اہم کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹیریو کی حکومت نے ڈاکٹروں، صحت کے عہدیداروں، سکول بورڈ اور اساتذہ کے ساتھ مل کر ہمارے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ مل کر کام کرنا حکومت کے اس منصوبے میں جسمانی دوری، سکولوں میں زیادہ اساتذہ، نگراں اور نرسیں رکھنا، ماسک پہننا، صفائی ستھرائی اور ہاتھ صاف کرنے اور طلبہ اور سکول کے عملے کی بہتری کو یقینی بنانے کے لیے دیگر اقدامات شامل ہیں۔ مزید جاننے کے لیے ملاحظہ کیجیے ontario.ca/reopeningschools۔ حکومت اونٹیریو کی جانب سے ادائیگی کردہ۔ اونٹیریو کے سکولوں کو بحفاظت دوبارہ کھولنے میں ہر ایک کا اہم کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹیریو کی حکومت نے ڈاکٹروں، صحت کے عہدیداروں، سکول بورڈ اور اساتذہ کے ساتھ مل کر ہمارے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ مل کر کام کرنا حکومت کے اس منصوبے میں جسمانی دوری، سکولوں میں زیادہ اساتذہ، نگراں اور نرسیں رکھنا، ماسک پہننا، صفائی ستھرائی اور ہاتھ صاف کرنے اور طلبہ اور سکول کے عملے کی بہتری کو یقینی بنانے کے لیے دیگر اقدامات شامل ہیں۔ مزید جاننے کے لیے ملاحظہ کیجیے ontario.ca/reopeningschools۔ حکومت اونٹیریو کی جانب سے ادائیگی کردہ۔
عائشہ، یہ تم کیا سر پکڑ کر بیٹھی ہو؟
گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور مجھے 10 جگہوں پر جانا پڑے گا گروسری کے لیے۔
10 جگہ کیوں، ایک ہی جگہ ہے، فاطمہ گروسرز۔
فاطمہ گروسرز؟
جی ہاں، فاطمہ گروسرز، مسالے، تازہ سبزیاں، پھل، حلال گوشت، میرینیٹڈ میٹ آئٹمس اور اسپیشل بیف سٹیکس بھی۔ گروسری کا سارا سامان ساز و آواز کے ریفرنس پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی۔ میکلاگلن اور برسٹل کے انٹرسیکشن پر نیو فاطمہ گروسرز، 512 برسٹل روڈ، ویسٹ آف مسیساگا۔ 905-848-7000۔ فاطمہ گروسرز، سب سے زبردست۔
لال بتیاں والا سارے تو تہاڈی گڈی مگر گھوم گیا، ہن کی کرو گے؟
ڈونٹ وری، ہن کم آؤ گے والیئر ٹریفک لیگل سروسز دے مسٹر آر ایس والیا۔ کیئرلیس ڈرائیونگ، سیٹ بیلٹ، ڈرنک ڈرائیو یا پھر ریڈ لائٹ، ٹریفک دی کسی بھی الگنا وچ پھنس گئے ہو تو مسٹر آر ایس والیا۔
سارے سدرن اونٹیریو وچ سیواواں لئی 86 کینیڈی روڈ ساؤتھ برمپٹن وچ 905-454-2112۔
905-454-2112۔ آر ایس والیا۔
کشمیر کڑھائی پوائنٹ، بہترین لذیذ ذائقے دار کڑاہی یا پھر کری ڈشز ہیں، تھالی یا باربیکیو آئٹمز ہیں، کڑھائیاں بہت مزے کی ہیں، ویجیٹیبلز اور بریانیز کے لیے دے آر جسٹ ٹیکنگ آرڈرز اوور دا فون۔ اسکپ دا ڈشز، اوبر ایٹس یا پھر ڈور ڈیش۔ برامٹن میں کشمیر کڑھائی پوائنٹ، پاکستانی اینڈ انڈین کوزین، 225 کیسل او کراسنگ ان برامٹن، 9057585099۔
فرسٹ مورگیج، سیکنڈ مورگیج یا پھر ہو بے لون،
سوچو نہ بس، بالکل بھی ہونے ملاؤ فون۔ 416-500-2-8000، سٹریس چاہے لاکھ نہ ہو یا کاکھ نہ، اس زندگی مشکل کر دیتا ہے۔ باقی باتیں ایک طرف، آپ کے فائنینشل سٹریس کا حل ہے شیراز شفیق، جن کے پاس ہیں ملینز آف ڈالرز کے پرائیویٹ فنڈز۔ لاسٹ منٹ کلوزنگز ہوں یا ڈیفیکلٹ ڈیلز، سبھی کے لیے شیراز شفیق۔ 416-502-8000، لائسنس نمبر 10845، انڈیپینڈنٹلی اونڈ اینڈ آپریٹڈ۔
جی صاحب اکرام اینڈ ناظرین، ویلکم بیک اگین۔ اینڈ صاحب، 6:13:18 ہماری گھڑی میں ہو چکے ہیں، 7 بجے تک ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے ساتھ ہوں گے، اور 7 سے لے کے 7:30 بجے تک آپ کو ہم لے چلیں گے بی بی سی کی تازہ ترین خبروں کی جانب۔ گرل اینڈ چک کی بات کر چلیں، گرل اینڈ چک 15 مونٹ پیلیئر اسٹریٹ برامپٹن کے علاقے میں ہے صاحب، مساگا روڈ اینڈ فائنینشیل ڈرائیو ٹو بی ایگزیکٹ لوکیشن۔ گرل اینڈ چک پہ چکن کے ہر قسم کے کھانے ملیں گے آپ کو یہاں پر، چاہے وہ ڈنر ہو چاہے لنچ ہو۔ بچوں کے لیے ہیمبرگرز اینڈ سینڈوچز، اس کے ساتھ فرینچ فرائز وغیرہ۔ گرل اینڈ چک پہ پہنچ جائیے آپ، مساگا روڈ اینڈ فائنینشیل ڈرائیو کے کارنر پر جہاں پر اسٹرپ پلازا ہے، اسی پلازا میں آپ کو ملے گا گرل اینڈ چک۔ 905-456-0500 ان کا فون نمبر ہے۔ اور جب بات کر رہا ہوں میں صاحب بچوں کی، تو بچوں کے لیے इस साल मींस हैलोवीन जब करीब करीब आ रही है और साहब हमारे जॉन टोरी जो है टोरंटो के मेयर, उन्होंने कहा है कि शायद अगर मैं जब बात करूंगा जब करीब आ जाएगी हैलोवीन तो हम हमारे अपने पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल से बात करेंगे, अगर फेस टू रिस्की वील कैंसिल ट्रिक और ट्रीट, जो बच्चे जाते हैं ना दरवाजों पर खटखटा के ट्रिक और ट्रीट करते हैं, तो फिर जॉन टोरी ने पहले से वार्न कर दिया है क्योंकि लॉस एंजलिस पहला जगह है जहां पर के उन्होंने ऑलरेडी उसको कैंसिल कर दिया है, और नॉर्थ अमेरिका में और कहीं दूसरी जगह कैंसिल नहीं हुई है, मगर लॉस एंजलिस इज़ वन ऑफ द ओनली प्लेसेस वेयर उन्होंने कहा है कि ट्रिक और ट्रीट जो है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं, तो यू नेवर नो मे बी यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगी। साहब आप जाती है ट्रिक और ट्रीट के लिए?
जब हमारे छोटे थे तो हम जरूर जाया करते
ट्रिक और ट्रीट के लिए।
आप ट्रिक कर दी या ट्रीट? नहीं, इसका मैं आपको कल भी हमारा इस प्रोग्राम के बाद यही हुआ था। अजय भाई, बाज़ूकात ना हम चीज़ों के लिए सख्ती करते हैं जिसमें हम बच्चों के रास्तों को बंद कर दिया करते होते हैं। आई अंडरस्टैंड कि रिलीजन के मुताबिक चलना बहुत ज़रूरी है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलना बहुत ज़रूरी है, मगर एक बात याद रखिएगा कि जब बहुत ज़्यादा सख्ती की जाए ना तो वहाँ हम अपने प्यारों को, ख़ास तौर पे बच्चों को, जिनको हर चीज़ यानी गर्म को हाथ लगा के ख़ुद सीखने का शौक़ होता है, हम उनको अपने से मुतनफ़र कर रहे होते हैं। तो बच्चों के साथ निकल के इस माहौल के मुताबिक अगर हम आए,
आरफा जी, दो चीज़ें होती हैं हमेशा, एक रिलीजन है और एक कल्चर है। यू एंड आई डिसाइडेड टू कम टू दिस कल्चर,
एग्जैक्ट।
तो अब अगर आप हम यहाँ आके इस पे तनकीद करें, ये ट्रिक और ट्रीट एंड ये जो हैलोवीन होती है इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी के भी रिलीजन से।
यहाँ का फंक्शन एक है, यहाँ का एक प्रोग्राम है बच्चों की। हाँ जी,
बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं यहाँ पर जो यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब वो पाकिस्तान में भी फरवरी का जो
मोहब्बत का दिन,
तो मोहब्बत का दिन जो है वो सिर्फ यही बनता था, अब तो पाकिस्तान में भी बनता है। पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान वालों, तो
यहाँ पे मजे की बात ये है कि बाय चांस टॉपिक वो आ गया, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की जब हम बात कर रहे हैं, यानी मीडिया इतना एडवांस है कि एक दुनिया का जो कल्चर है वो दूसरे ममालिक में भी जा रहा है। वहाँ पे मैं पहले उस बात को मुकम्मल कर लूँ जो मैं कहना चाह रही थी। अगर आपकी बेटी है, बच्चियाँ छोटी हैं, तो बिल्कुल सख्ती मत करें कि बाजी अब तो तुमने दुपट्टा लेके जाना है। आप उसको कुरान पाक की तालीम दीजिएगा एंड देन लेट हर गो थ्रू 6712। अगर आपको एतराज़ है तो ज़रूर मेरे साथ शामिल हों। अभी बल्कि मैंने आपका जो मुझे कॉल टायर का पैगाम आया था, मैंने शाजिया साहिबा को वो भेजा भी, और अभी मैं अपने फ़ोन पे दिखा भी देती हूँ और उसको मैं करती हूँ। मगर ये मैं एक हकीकत कहती हूँ कि कॉल टायर एक हमारा बिजनेस है जहाँ पे कोई भी शख्स अगर अपनी गाड़ी लेके जाए तो ब्रेक से लेके, टायर से लेके, गाड़ी की मेंटेनेंस से लेके तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर किया जाएगा, और प्रोग्राम साज़ो आवाज़ के हवाले पे जो भी स्पेशल्स हैं वो भी। मैं आपका मैसेज यकीनन जिस दिन कॉल टायर की मैनेजमेंट से कोई लोग दोबारा आएंगे, आई विल डेफिनेटली शेयर इट एंड आई विल गेट प्रॉपर आंसर। मैं कोई चीज़ को गलत तरह से नहीं करना चाहती बिकॉज दिस इज़ टू शॉर्ट टू लिव फॉर मी। बच्चियों के लिहाज से जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, कि अगर मैं अब ज़बरदस्ती करूँ कि अब मेरी बहू है तो बस बच्चा अब तो तुम बुरके के बीच में बंद हो जाओ, ज़िंदगी में कुरान पाक की तालीम दीजिएगा, अहदीस की तालीम दीजिएगा, और फिर उन बच्चों को जज एनालाइज़ करके उस रास्ते, वो ज़्यादा परमानेंट होगा बजाय इसके कि हम किसी चीज़ को मजबूरन उनके ऊपर थोप दें कि बस अब दिस इज़ व्हाट यू गॉट टू डू। लेट देम लर्न, बी द रोल मॉडल फर्स्ट, बी द रोल मॉडल,
दैट इज़ व्हाट,
बी द रोल मॉडल। अब ये तो नहीं कि मैंने तो जवानी के बीच में आधे कपड़े सब कुछ कर लिया, दुनिया की खाक खा ली, और जब मैं बूढ़ी हूँ और मेरी बहू आई और मैं उसको कहूँगी ना बच्चा अब तुम तो बुरके के बीच में बंद हो जाओ, तो लेट देम लर्न, आप उनको तरबियत अच्छी दें उसके बाद चलें।
बच्चा और जानवर जो है ना अपने बड़ों से सीखता है, जानवर भी अपने बड़ों से सीखता है और बच्चा भी जो है,
और बिल्कुल अपने आप को से गलत बयानी मत करें। क्रिसमस के मौके पर सांता भी आता है, सांता के पास जाके आप तस्वीरें भी उतराते हैं, बच्चों को उस एक्सपीरियंस में से गुजरने दें। और फिर बिल्कुल मैं अपने बेटे के साथ ट्रिक एंड ट्रीट पे भी गई हूँ, डेफिनेटली गई हूँ। उसके बाद अब ज़ाहिर है बड़े हो गए, अब नहीं जाते। मेरा अपना कभी कभी दिल करता है जाने को कि जाके दुनिया को देखूँ, पर अब टाइम ही नहीं है। मैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की जब बात कर रही हूँ, और यकीनन मैं इसको आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ, बट आई विल डेफिनेटली मेंशन सम ऑफ माय स्पॉन्सर्स एट द मोमेंट। कार्ल टायर के बारे में आपने मुझसे भी कहा, 6712 आप ही का मैसेज आया है कि फ्री इंस्टॉलेशन ऑन योर 4 न्यू टायर्स, ये 10 अक्टूबर तक, यानी टुमारो तक नहीं, अक्टूबर अगले महीने की 10 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है। विंटर टायर चेंज करना चाहते हैं तो कार्ल टायर पे पहुंचिएगा, carltire.com। आपकी टायर्स को चेंज करना विंटर चेंज ओवर के लिए, नए टायर्स के लिए, अगर आप 770 को मेंशन करेंगे, इट्स इन द ब्लैक एंड वाइट, व्हेन यू मेंशन 770 एम रेडियो, दे विल गिव यू फ्री इंस्टॉलेशन ऑन योर सेट ऑफ 4 न्यू टायर्स, और 10 अक्टूबर तक ये ऑफर वैलिड है। कार्ल टायर के दफातर मुख्तलिफ जगहों पर है। कैलेडन सब्जी फार्म के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मिर्चें, लौकी, करेला, भिंडी, बैंगन, जो भी आपने खरीदना है, कैलेडन सब्जी फार्म, 12050 एयरपोर्ट रोड, एयरपोर्ट एंड मेफील्ड का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनता है, राइट देयर। हमारे आज के प्रोग्राम को हॉट स्टार ने भी ताबुन दिया है। आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं अभी, आपने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का देखा कल, इंग्लैंड 2-1 से जीत गया। और अगर आप ये तमाम आईपीएल के मैचेस भी देखना चाह रहे हैं, आई बिलीव स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of September, तो आप हॉट स्टार का प्रिस्क्रिप्शन ले लें। आप इसको सब्सक्राइब, प्रिस्क्रिप्शन नहीं, मैंने फिर गलत बोल दिया, आई नो। कल मैंने जाके एक प्रोग्राम अपना देखा है, आई सेड आरिफा व्हाट इज रॉन्ग विद यू, एनीवेज सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा हॉटस्टार को, विजिट hotstar.com/ca, मगर इसका प्रोमो कोड जो है वो ई आवाज़ है। विलेज टेस्ट के बारे में ये लोग आपको बता चुके हैं, वो कहते हैं ऑल यू ईट $16 बड़ों के लिए और बच्चों के लिए $11 है, और आपकी टेबल पे फूड आपकी मर्जी के मुताबिक ऑन डिमांड सर्व की जाएगी। 4141 डिक्सी रोड पे विलेज टेस्ट, उसका नंबर 9052323663। इस्लामिक स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी के बारे में भी जिक्र करना चाहती हूँ। पिछले 7 साल से ये स्कूल है, इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल्स जो आपको अराउंड 40 के करीब वॉलंटियर्स का स्टाफ है यहाँ पे, और अराउंड 200 स्टूडेंट्स एंड वॉलंटियर, 160 स्टूडेंट्स हैं, 40 वॉलंटियर्स हैं। तमाम बच्चों के लिए, हर जनरेशन के लिए, यानी 4 से लेकर 19 साल की उम्र तक, इस्लामिक एजुकेशन एंड गुड मॉरल एंड करेक्टर्स की डिवेलपमेंट के लिए। पर ये नहीं ना कि खुद आप जो मर्जी करें और रात को बच्चों को सुला, बच्चे बड़े चलाक होते हैं, ये रात को भी सोते हुए में भी सुन रहे होते हैं, तो ये ना हो कि मैं बच्चों को कहूँ कि बच्चा तुम तो ये करो और ख़ुद मैं रात को बैठ के फिल्में देखूँ, तो फिर यू नो कॉल और फिल्म में तजाद हो गया ना, दैट्स रॉन्ग। तो स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी कैनेडा, वो भी कहते हैं गुड मॉरल्स एंड आपको करेक्टर बिल्डिंग की ट्रेन करते हैं, स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी। ऑनलाइन वीकेंड इस्लामिक स्कूल है, ऑनलाइन तो कोई फ़ी नहीं है, अलबत्त जब स्कूल शुरू होंगे तो $35 पर मंथ है। और स्ट्रीट्सविल सेकेंडरी स्कूल पे ये स्कूल है, आप रब्ता कर लीजिए, silk.com silk.ca इनकी वेबसाइट है, silk.ca। कल हमारा एक प्रोग्राम आपके खिदमत में पेश करेंगे, ट्रिब्यूट, सेकंड पार्ट है ट्रिब्यूट टू जनाब वहीद मुराद साहब, इंशाल्लाह कल हम आपके साथ शेयर करेंगे। नायाब बारबेक्यू डिलाइट के बारे में भी जिक्र करना चाहती हूँ, लंच स्पेशल्स हैं, चिकन स्पेशल, बारबेक्यू, गोट स्पेशल, वेजी लवर हैं तो वेजी स्पेशल्स भी इनके पास, एपेटाइजर्स के साथ स्ट्रीट स्टाइल स्नैक। स्ट्रीट स्टाइल स्नैक क्या होते हैं? गोलगप्पा, चाट पापड़ी, दही बड़े वगैरह वगैरह, गाड़ी में मंगवा के खा लीजिएगा। ग्रिल स्पेशल्स में सीख कबाब है, रेशमी कबाब है, बिहारी कबाब है, मलाई बो, यानी कबाबों की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। नायाब कढ़ाई इसके बीच में अराउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्लेवर्स हैं। नायाब करीज के बीच में ऑफ कोर्स बादामी कोरमा, बादाम का कोरमा अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, फज्जे के पाए खाना चाहते हैं आप, या नहरी खाना चाहते हैं, या चिन्योटी कुन्ना गोश्त, वाओ भाई टोरंटो में मुझे कुन्ना गोश्त नहीं वो मिला जो पाकिस्तान का कुन्ना गोश्त था, आई विल गो एंड ट्राई इट, कुन्ना गोश्त वेरी डिलिशियस। यहाँ पर हमारे एक भाई हैं, मुझे एक दफ़ा उनके घर जाने का इत्तफाक हुआ था, क्या नाम था उनका जिनको $2,000 की $700 की टिकट लगी थी 407 के ऊपर, क्या उसका नाम था भाई, अली, अली भाई एग्जैक्टली, उनके घर मैंने कुन्ना गोश्त, दैट वाज डिलीशियस। मगर कुन्ना गोश्त पाकिस्तान में ना तो ज़मीन के अंदर गढ़ा करके उसके बीच में बनाया जाता है, आई डोंट नो ये कैसे बनाते हैं। बहरहाल कुन्ना गोश्त ये नायाब बारबेक्यू डिलाइट की पेशकश है और डिज़र्ट्स भी हैं, ऑर्डर कर सकते हैं तो 9056768860676868860। आईपी टेलीविजन, आज मुझे एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं अपने स्टूडियो के लिए एक चीज़ बनवा रही थी तो वहाँ एक आदमी आया मेन स्ट्रीम का, उसने 140 के $150 का आईपी बॉक्स सिर्फ हार्डवेयर खरीदा साहब, ये $199 में 5G, बिल्कुल 5G जो विच इज़ द लेटेस्ट वन 5G आईपी बॉक्स है, जिसमें अराउंड 4000 उर्दू अंग्रेजी पाकिस्तानी हर तरह के चैनल्स आपको मिलते हैं, आईपी बॉक्स 12 महीने के लिए आपको प्रोग्राम करके दिया जाएगा। यस आई एम हियर, अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, इट इज़ फॉर 12 मंथ्स। आप जिशान का नंबर 6472192580, आईपी बॉक्स को एज यू गो जहाँ भी आप ट्रैवल करें अपने साथ ले जाइए। 4C ब्रॉस चिकन, आज क्या दिन है, आज क्या दिन है, आज है बुध और कम सुध, वेनसडे को कहते हैं बाय वन चिकन सैंडविच गेट सेकंड हाफ प्राइस, एक चिकन सैंडविच लें दूसरा आधी कीमत पे, और कीमत क्या है $4.99, $2.50 का सैंडविच, चिकन ब्रेस्ट का है ये, यस चिकन ब्रेस्ट का सैंडविच। और वैसे एवरीडे स्पेशल में द बेस्ट डील व्हाट दे हैव इज 10 पीसेस फॉर $11.99 प्लस टैक्सेस ऑफ कोर्स, लेग्स एंड थाइस के आपको 10 पीस, वेरी गुड डील, वेरी गुड डील। आप घर में बारबेक्यू ही करने लगे ना तो जो एक्चुअली कोयले हैं ना मैं लेके आती हूँ वो $18 के मिलते थे, इस दफ़ा मुझे कहीं $15 के भी मिले जो जेन्युइन कोयले हैं, उनके ऊपर ज़्यादा मज़े का बनता है, तो वो आप समझिएगा कि इट्स वेरी गुड प्राइस, 10 पीसेस $11.99 एंड दैट इज़ वॉक इन स्पेशल्स भी इनके पास हैं, 4C ब्रॉस्ट यानी चिकन, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर। इनकी दो ब्रांचेस हैं, एक इनकी 1093 ओकॉनर ड्राइव पे, ओकॉनर ड्राइव टोरंटो में, और सेकंड ब्रांच इनकी है 3879 लॉरेंस, लॉरेंस ईस्ट के ऊपर। डू यू नो व्हाट इज द इंटरसेक्शन फॉर लॉरेंस ईस्ट,
लॉरेंस जो स्कारबरो गोल्फ क्लब रोड है ना, उससे थोड़ा ही ईस्ट पे आप जाएंगे ना, अगर इफ यू आर गोइंग नॉर्थ तो आपके राइट हैंड साइड पे नजर आएगा, इफ यू आर गोइंग ईस्ट,
इफ यू आर गोइंग टू ईस्ट, ये www.4cbrost.com के ऊपर आप लॉग ऑन करें। साहब एक पोम मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उस पोम के बाद इसमें किसी को पर्सनल लेने की बात नहीं है, मेरा ख्याल है असद भाई का ये कलाम है जो हमारे हार्ट स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट पाकिस्तान हार्ट का जो डॉक्टर है कौन सा वाला वहाँ पे आप कार्डियोलॉजिस्ट थे और अब यहाँ मिल्टन में आप मुकीम हैं, कहते हैं कि फ़र्द नहीं वो सोच है कोई जिसने दिल में नफ़रत बोई। ये मेरी पोम है, मगर हम अभी माजी जमाल साहब बात कर रहे थे कि किस तरह से आप लोगों के दिलों के ऊपर या लोगों की सोच को बदलने का आजकल का रिवाज है, उस हवाले से मैं पहले ही बात कर रही थी कि मैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के बारे में आपको शेयर करूंगी। कहते हैं कि खबरदार, पाकिस्तान को शाम की तरह फिरका वराना फसादात में धकेलने के लिए दुश्मन ममालिक की खुफिया एजेंसियों ने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के आखिरी मरहले का आगाज किया। आखिरी मरहला क्या है कि हमें डिवाइड करने के लिए रिलीजन को, दे डोंट नीड आमने सामने जंगें, दे डोंट नीड के मैदान के फौजी उतरें, दे डोंट नीड, उनको पता है कि पाकिस्तान की ताकत क्या है। मैंने बल्कि आज जीशान को एक क्लिप भेजा था, और उसमें मैंने एक ख़ास चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने का रिक्वेस्ट किया था। पाकिस्तान की फौज के बारे में चंद लोग बुरा बोलते हैं, गुड फॉर देम, मगर ये वो लोग हैं जिन्होंने हर चीज को एक्सपोज करने, देयर वाज अ टाइम रिस्पेक्ट का जो एक आलम है, एक जमाना था, मैंने खुद उस जमाने में से गुजरी हुई हूँ। शायद मैंने एक दिन आपके साथ इस बात को शेयर भी किया था, प्रोबेबली आई बिलोंग टू एब्सोल्युटली रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट। मुझे याद है कि मेरे स्कूल की एक डिबेट थी, तो हमारे खालू बड़ा अच्छा लिखा करते थे, उनसे मुलाकात हुई, तो एक ख़त के ऊपर, एक लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखने की जब बात हुई, तो से एक शख्स का नाम है जुल्फिकार अली कुरैशी, तो मैंने लिखा जुल्फिकार अली कुरैशी फ्लां फ्लां मॉडल टाउन लाहौर। तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में अलकाब व आदाब को किस तरह से इस्तेमाल किए जाते थे, तो कहने लगे कि लिफाफे के ऊपर रिस्पेक्टेड जुल्फिकार अली कुरैशी लिखिए। तो मैंने हंस के कहा, हमारे खालू, अल्लाह जन्नत नसीब करे, थे वो हमारे खालू, मगर हम उनके मामा जी कहा करते होते थे। मैंने कहा मामा जी मतलब ये तो ख़त है। कहने लगे कि जिन लोगों की तमीज़ होती है ना, तो वो उनके अल्फाज में से उनकी तमीज़ झलका करती होती है। ये वक्त और हालात और मॉरल्स की बात है। आज के दौर में जब हम जॉब करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि मुझे किसी रिश्ते या अलकाब व आदाब से मत बुलाओ। मिसाल के तौर पर मैं उन फैमिलीज़ को भी जानती हूँ जो बेटी को भी आपा के नाम से पुकारते थे, या बहनें बड़ी भी होती थी या छोटी, बहनें छोटी भी होती थी तो आपा कहा जाता था, नॉट इन अ वे कि वो आपा थी, मतलब एक रिस्पेक्ट माँ बाप के लिए अम्मी जान, अब्बू जान, खाला जान, मामू जान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। फिर ये वक्त बदलता चला गया, तो अब वो हम ऑफिस में भी माजिद जमाल कह के ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं। वक्त और हालात ने, और ये हमारी फिल्मों ने हमको इस जगह पे लेके, और ये सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी इससे मुतासर नहीं, पूरी की पूरी दुनिया इस बात से मुतासर है। इट्स वेरी इजी कि किसी की भी इज्जत को लपेट के उसके हाथ में पकड़ा दिया जाए, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट डिफिकल्ट। रवादारी की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो एक शख्स की एक पैगाम मेरे तक पहुँचा, कहते हैं कि मैं अपने अब्बा जी को मिलने के लिए गया, बात गौर से सुनने की है, कहते कि मेरी अच्छी जॉब थी, मैं अमेरिका में था और मैं अब्बा जी को मिलने के लिए गया। जब मैं मिलने के लिए गया तो ज़ाहिर है बहनें भी आ गई, अम्मी भी थी, हम सारे एक जगह मजमा लगा के बैठे होते थे। मेरे पास चार पैसे थे, तो एक दिन मैं और अब्बा जी सोफे के ऊपर बैठे हुए थे, अम्मी और बहनें सारे बैठे हुए थे। जब मैंने देखा कि सब अपना अपना काम में मशगूल हैं, तो मैंने हाथ में मेरे कुछ कुछ पैसे थे, मैंने अब्बा जी को ऐसे करके पकड़ा दिए, अब्बा जी के हाथ के नीचे हाथ रखा और अब्बा जी के हाथ पे पकड़ा दिए। मेरा ख्याल था कोई भी नहीं देख रहा, तो कहते कि मेरी वालदा मुझे देख रही थी, मेरी वालदा सरा सख्त तबीयत की मालिक थी, तो मुझे कहने लगी दोबारा दो। ये कहते मैं डर गया कि मेरा ख्याल था तो, मगर मेरी अम्मी सख्त तबीयत की मालिक थी, तो साथ ही उन्होंने मेरे बहन के बेटे जिसका नाम हमजा था उसको मुतवज्जो किया कि देखो मामू क्या कर रहा है। कहते कि मैं इस चीज़ का सोचता हूँ कि जब हम बच्चे थे तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी हम हाथ फैलाते थे, अबू जान पैसे दे दें, किराए के पैसे दे दें, या आपने भी अपनी ज़िंदगी में मांगे होंगे, मैंने भी बेशुमार दफ़ा अपने पेरेंट्स पे इनसार किया, तो बड़े की एक इज्जत ही होती है। वो बाप वो मुकाम था जिससे मैं हमेशा लेने की पोजिशन के ऊपर रहा था। आज मेरा बाप बूढ़ा था, तो मेरा दिल नहीं करता था कि मैं ऐसे पैसे दूं और अब्बा जी ऐसे पकड़े, तो मैंने अब्बा जी को हाथ पे हाथ रख के ऐसे पैसे दिए कि मेरा हाथ नीचे था, अब्बा जी का हाथ ऊपर था। तो वालदा ने कहा दोबारा दो, मैं डर गया कि अम्मी, क्योंकि जर्नैल सिफ्त की अम्मी थी, उन्होंने देख लिया था कि इर्द गिर्द, हालांकि वो जब मैं दे रहा था तो उनकी तवज्जो किसी और तरफ थी, और साथ ही उन्होंने मेरे भांजे की तरफ कहा कि हमजा देखो मामा क्या कर रहे हैं। اور پھر میری ماں نے میری بھانجی مجھے کہا کہ بتاؤ حمزہ کو, تو کہتے پھر میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا ساری عمر ابا جی سے پیسے لیے ہیں میں نے, آج ابا جی اگر کام نہیں کرتے تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں اوپر کے ہاتھ سے پیسے دوں اور ابا جی نیچے کے ہاتھ سے. ابا جی نے نیچے ہاتھ سے بھی پیسے لے لینے تھے, کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر یہ ایک دل کا سکون ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مگر اس معاشرے نے اور اس بے راہ روی نے ہم کو اتنا امپریس کیا ہے کہ ہم ہر چیز میں اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کو شام کی طرح فرقہ وارانہ جنگ میں دھکیلنے کے لیے دائرہ وہ لوگ جو ہم کو گرانا چاہتے ہیں, جو ملک کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, ان کی ایجنسیز نے ففتھ جنریشن وارفیئر کے آخری مرحلے کا آغاز کیا. اب یہاں پر سمجھ آپ کی اور میری ہونی چاہیے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہر مذہب کو ہر فرقے کو اپنا اپنا رائٹ ہے. یہ بالکل وہی رائٹ ہے لیونگ ان کینیڈا جو میں محسوس کرتی ہوں کہ میرا حق ہے کہ مسجد بنا لوں, میرا حق ہے کہ میں مدرسہ بنا لوں. اٹس ہیومن رائٹس. تو مجھے باقی لوگوں کو بھی سانس کا بہترین جج اللہ کی ذات ہے, نہ میں جج ہوں اور نہ آپ جج ہیں. بہت سے لوگوں کو میری بات ناپسند آئے گی, مگر یہ فیکٹس کی بات ہے کہ اس کے نتائج کوئی اتنے اچھے نہیں ہوں گے. ایون سعودی عربیہ اٹسلف از انوالوڈ ان دس, اور سعودی عربیہ نے اس بات کا کنفیس کیا تھا اس بات کو کہ یس, جو ہم نے وہابیزم کو ہی پروموٹ کیا تھا تو دیٹ واز اونلی ڈیورنگ دا ٹائم آف جو افغانستان کی جب جنگ شروع ہوئی تھی. ففتھ جنریشن وارفیئر وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی جنگ ہے جو صرف ہتھیار ہی سے نہیں لڑی جاتی. یہ وہ زمانہ تھا فرسٹ جنریشن وارفیئر, تلواریں نیزے پکڑ کے آمنے سامنے آ کے لڑا جاتا تھا. سیکنڈ جنریشن وارفیئر جس کے بیچ میں ٹینک آ گئے تھے, جس میں جہاز آ گئے تھے, سیکنڈ ورلڈ وار کے دور میں ہم انٹر ہو گئے تھے. تھرڈ جنریشن اور پھر فورتھ جنریشن. ففتھ جنریشن وارفیئر, اب تھوڑا سا کنفیوژن بھی ہے کہ فورتھ جنریشن اور ففتھ جنریشن آلموسٹ قریب قریب ہیں, بہت قریب قریب ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹرانزیشن پیریڈ ہے, فورتھ جنریشن میں بھی انہوں نے میڈیا کا استعمال کیا تھا. بٹ ناؤ یو نو ہاؤ اسٹرانگ از دا میڈیا. آپ دیکھ لیجئے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹویٹر نے بلاک کیا, فیس بک نے بلاک کیا, یعنی یہ سوشل میڈیا. فیس بک کے اوپر الزام ہے کہ بی جے پی کو انڈیا میں سپورٹ کر رہی ہے بیکاز انڈیا سے دے گیٹ اے ٹریمینڈیس بزنس. تو پھر یہ جو ٹولز ہیں یہ پھر ان حکومتوں کو اپنا فیور بھی دیتے ہیں. امریکہ کے آپ کے لاسٹ الیکشنز کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے, کتنے اوپنلی کہا گیا تھا کہ رشیا نے اس کے بیچ میں انٹرفیئر کیا تھا. آپ ڈی این سی کی میٹنگ کو یاد رکھیں, آپ کو یاد ہے ڈی این سی کی میٹنگ کو بھی انہوں نے فلاپ کرنے کی کوشش کی تھی بیکاز رشیا ذاتی طور پہ تو وہاں موجود نہیں ہے, مگر میڈیا کے ذریعے دے آر ٹرائنگ. آج تک زندگی میں سی این این از واچڈ آل اوور دا ورلڈ. میں بلکہ یہ کہا کرتی تھی یس ناؤ رشیا از ڈوئنگ گڈ, مگر رشیا کا جو اب رشین ٹیلیویژن آر ٹی ٹیلیویژن ناؤ, اب میں اس کی شنید بھی سنتی ہوں, پروگرام بھی دیکھتی ہوں, اور وہ انگریزی میں بیکاز انگریزی از این انٹرنیشنل لینگویج. اب آر ٹی ٹیلیویژن جو ہے وہ انگریزی پروگرامس کی پروڈکشن کر رہا ہے اور ڈیفینیٹلی وہ بھی اپنے مقاصد کو پورا کر لیں گے. ففتھ ویئر وار جنریشن, یہ ایسی جنگ ہے جو صرف ہتھیار سے نہیں لڑی جائے گی بلکہ سوشل میڈیا, علم اور قلم سے لڑی جائے گی. اس جنگ میں ہر پاکستانی ایک فوجی ہے, اور اب آپ دیکھ لیجئے گا بحیثیت فوجی آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, کن ویڈیوز کو آپ نے آگے فارورڈ کرنا اور کن ویڈیوز کو آپ نے فارورڈ نہیں کرنا. اختلافات ضرور ہوا کرتے ہوتے ہیں, مگر وہ آپ کا اور میرا ایک اختلاف یہ نہ ہو کہ معاشرے کے بیچ میں رفٹس کو بڑھا دے, یعنی دراڑوں کو بڑھا دے اور واپس آنے کی کوئی گنجائش نہ رہے. ہماری فوج اور ایجنسیز یقیناً میدان میں لڑ سکتے ہیں, مگر اگر یہ دماغوں کے بیچ میں تغیر اور تفرق آ گیا تو اس تفرق کو کوئی پارٹ نہیں کر سکے گا. سماجی میڈیا پر ہم سب کو مل کر لڑنا ہوگا. ریڈیو, ٹیلی ویژن, یہ جتنا پروپیگنڈا ہے یہاں پہ مجھے اور آپ کو مل کے کام کرنا ہوگا. اللہ کرے کہ میں اور آپ بہتر طور پہ اس کا حصہ بن سکیں. ففتھ جنریشن وارفیئر ہے کیا؟ فرسٹ جنریشن, مورخین نے مختلف حالات کے مطابق اور مقامات کے مطابق اس کی تفریق کی ضرور ہے, یعنی پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا. अब इस वक्त थोड़ा सा इबहाम है, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन के दरमियान में थोड़ा कंसिडर किया जाता है कि जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें भी मीडिया का इस्तेमाल किया गया था, मगर नाउ द मोस्टली जिस तरफ पानी का बहाव करना होता है अवाम के दिमागों का रुख उस तरफ मोड़ दिया जाता है। और मैं आप एक हम अक्सर औकात उन अहादीस की तस्दीक भी नहीं करते जो इन सोशल मीडियाज के ऊपर हमें अहादीस मिलती हैं, मगर हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इतने बुरे तरीके से फैलाते हैं कि हम नफरत को बोते चले जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड नाउ एज आई सेड कि द मोस्टली थिंग्स जो हैं वो हमारी फिफ्थ जनरेशन यानी इंटरनेट। और आप इमेजिन कर लीजिएगा पिछले 4-5 सालों में इंटरनेट और इंटरनेट सिक्योरिटीज कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आप सोचिएगा अब किसी और मुल्क में 7 समंदर पार लोग बैठे यहाँ के हेल्थ सिस्टम के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ के ले जाते हैं, हैक कर लेते हैं उसको। साहब कुछ माहरीन सेकंड जनरेशन वॉर, फर्स्ट जनरेशन वो थी जो दूबदू आमने सामने तलवारों से लड़ाई। अभी बल्कि वो चाइना और इंडिया की जो लड़ाई है, एक मैं उसकी वीडियो क्लिप देख रही थी, मुझे फर्स्ट जनरेशन का हिस्सा लग रहे थे। ऑफ कोर्स फिफ्थ जनरेशन वॉर इज एट द टॉप, मगर वो जो मैदान में जब फौजी सामने आए तो क्योंकि इंडिया और उनके दरमियान पैक्ट अब गोलियां शोलियां नहीं चलानी तो वो अक्सर डंडों से लड़ाई करते हैं। तो जो वीडियो मैंने देखी ना उसमें लातों से मार रहे थे फौजी एक दूसरे को। बहरहाल कुछ माहरीन सेकंड जनरेशन वॉर को एक दौर से शुरू करते हैं और कुछ दूसरे दौर से, इस तरह कुछ माहरीन फिफ्थ जनरेशन के इकदाम को फोर्थ जनरेशन से भी का हिस्सा भी करार देते हैं, जबकि कुछ फिफ्थ जनरेशन को फिफ्थ जनरेशन ही कंसिडर करते हैं। जब जंगे दोनों तरफ इंसान आमने सामने तलवारों के साथ नेजों के साथ लड़ा करते होते थे वो फर्स्ट जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन इंग्लिश सिविल वॉर, अमेरिका की जंग आज़ादी इसकी नुमाया मिसालें हैं जिसमें दूबदू लड़ाई हुई थी। फिर जब बंदूक और तोपें ईजाद हुई और इसके ज़रिए जंगें लड़ी जाने लगी तो जंगों को सेकेंड जनरेशन का नाम दिया जाने लगा। अब बंदूक और तोप की इजाद से लेकर पहले जंग अजीम तक की जंगें इसकी मिसाल हैं। सेकंड जो वॉर हुई थी ना उसमें साहब जहाज भी आ गए थे, फिजाइया आ गई थी, तोपखाने आ गए थे, फिजाइया नेवी वगैरह को बुनियादी हैसियत हासिल, मिसाइल्स के जरिए दुश्मन पर वार करने के रास्ते भी निकल आए, टेक्नोलॉजी का फैसला कुन किरदार अदा करने लगा। तो इन जंगों को थर्ड जनरेशन का नाम दिया जाने लगा, यानी फिजाइया भी इन्वॉल्व हो गई, नेवी भी इन्वॉल्व हो गई और मिसाइल्स भी इन्वॉल्व हो गए। मिसाइल्स के जरिए दौर से दुश्मन पर वार करने के रास्ते भी निकले, टेक्नोलॉजी का फैसला कुन इस्तेमाल हुआ, इन जंगों को थर्ड जनरेशन। दूसरी जंग अजीम और वियतनाम कोरिया की जंग जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोरिया की वॉर, ये इसकी वाज़े मिसालें हैं। थर्ड जनरेशन तक जितनी वॉर्स हुई थी इसमें सिर्फ आर्मी इन्वॉल्व थी। आप देख लें तोपें इन्वॉल्व हैं, जहाज इन्वॉल्व हैं, गने गन्स इन्वॉल्व हैं वगैरह वगैरह, फिर आर्मी 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 आर्मी। अब आ जाता है फोर्थ जनरेशन का दौर। फोर्थ जनरेशन का दौर वो है जहाँ पर रिमोटली, यानी हम यहाँ हैं, आप अपनी फिल्मों के ज़रिए लोगों के दिमागों को वॉश कर सकते हैं, आप अपने ड्रामों के ज़रिए लोगों के दिमागों को वॉश कर सकते हैं, आप अपने लिटरेचर के ज़रिए, आप अपनी अखबारों के ज़रिए लोगों के दिमागों को वॉश कर सकते हैं, यानी ये फोर्थ जनरेशन है। अब कोल्ड वॉर सर्द जंग के दिनों में सोवियत यूनियन ने कई ममालिक में अपनी फौजें भेजने के बजाय मुकामी ताकतों के ज़रिए जंगों को लड़ा था, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में, आपको बताइए अफ़गानिस्तान में क्या हुआ था, उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स यानी तालिबान जो थे नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको तरबियत यहाँ पे दी गई थी अपॉइंट उनको वहाँ कर दिया गया था और पाकिस्तान को साथ में इन्वॉल्व कर लिया गया था। और लड़ाई कहाँ कराई थी, रशिया के साथ अफगानिस्तान में बैठ के लड़ाई कराई थी। ये फोर्थ जनरेशन का दौर आ गया था। सर्द जंग के दिनों में सोवियत यूनियन ने ये लड़ाई दी थी, अमेरिका ने नॉन स्टेट जो फैक्टर्स थे उनको इस्तेमाल किया था, मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था, सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी। उस वक्त जंगों में नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ साथ सफारतकारी, मईशत اور پروپیگنڈے. سفارتکار یعنی آپ اگر آپ افغانستان کی طرف آ جائیں تو افغانستان میں اگر آپ دیکھیں اٹس گڈ انڈیا از ویری ایکٹیو ان دس, اور انڈیا کی کتنے سفارت خانوں کے ساتھ ان کے سب آفیسز کتنے زیادہ ہیں, پھر ان کے جو ڈپلومیٹک آفیسرز ہیں وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ مکس ہوتے ہیں, ان کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ کی طرف لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنی جنگ میں سے ہی نہیں ہمیں کوئی نکلنے دے رہا, کبھی ہم اپنی سیاسی جنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں, کبھی ہم اپنی مذہبی جنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں, ان تمام چیزوں میں ہم انوالو رہے, پاکستان اسی مخمصے سے باہر نہ نکل پایا. بہرحال یہ اب فورتھ جنریشن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرز کون کون سے ہیں, سفارتکاری, معیشت اور پروپیگنڈا. پروپیگنڈا یعنی آپ ایک ہی چیز کو اتنا رپیٹ کرتے ہیں ریڈیو کے اوپر, اپنی فلموں کے ذریعے, اپنے ریڈیو کے ذریعے, اپنے اخبار کے ذریعے, آپ جس بندے کو, اور اب تو چیزوں کو ازبر کرانا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے, اب تو واٹس ایپ اور اس کے ذریعے ہی جو ہم میسج کرتے رہتے ہیں, ہم نے اتنا ایک دوسرے کے دماغوں کو برین واش کر دیا ہے, اور ہم سب سے بڑے وکٹم ہیں اس ففتھ جنریشن وارفیئر کے, بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہترین دماغ دیا ہے, بٹ ہم اس کو اپنے ہی اس شاخ پہ استعمال کر رہے ہیں جس شاخ پہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ میں آج کینیڈا میں ہوں, مگر سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا تھا تو آپ امیجن کیجئے گا کتنے بے شمار لوگوں کو پاکستان نے اپنی گود میں جگہ دی تھی. ریاستی افواج کے ساتھ ساتھ پراکسیز کا کردار جو ہے عام بنا, دہشت گردی بھی جنگوں کے اہم ہتھیار استعمال ہو گئی. اب آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کو توڑ کے رکھ دیا اس دہشت گردی نے. مجھے تو ذاتی طور پہ ہم نے جا کے اس کا لیکچرز لیے تھے جب ہم آئی ایس پی آر گئے تھے, کہ پاکستان میں کتنے لوگ مرے, کتنے سویلینز مرے, کتنے ہمارے فوجی مرے. پاکستان تو سب سے بڑا وکٹم رہا ان ٹیررسٹ اٹیکس کا. مگر پروپیگنڈا کیا ہوا کہ وہ عناصر جو پاکستان میں اٹیک کر رہے تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا خود ہی. ایک تو وہ مار رہے تھے اور پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا, ہمیں مار دیا, ہمیں مار دیا, ہمیں مار دیا. اور پھر اس پروپیگنڈے کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ امریکہ میں اتنی انفلوئنس کہ کانگریس کے بیچ میں دے وانٹ دیئر اون ممبرز ان دا کانگریس, جس میں دامے درمے سخنے ان کے جو ویل پلیس سوسائٹی ممبرز ہیں وہ فائنینشیل ڈونیشن بھی کرتے ہیں. ہمارا تو المیہ ہی سب سے بڑا اتنا ہے کہ ہم تو ایک ہم نے کام کرنا ہوتا, 25 دفعہ تو ہم میٹنگ کرتے ہیں اور 25 دفعہ کے بعد بھی رزلٹ زیرو. افغانستان, عراق اور ہائبرڈ وارفیئر, شام وغیرہ کی جنگیں فورتھ جنریشن کی نمایاں ہیں. اب ان جنگوں میں ایک نئی قسم سامنے آئی جس کو ففتھ جنریشن, دس از دا لیٹسٹ ٹائم. اب ففتھ جنریشن میں کیا ہو گیا, ریڈیو انوالو ہو گئے, ٹیلی ویژنز انوالو ہو گئے, اخبار انوالو ہو گئے, پروپیگنڈا پروپیگنڈا پروپیگنڈا, اور آن دا ادر سائڈ سوشل میڈیا, انٹرنیٹ اتنا زبردست ہوا, اتنا زبردست ہوا کہ آپ دیکھیے ایک پیغام آتا ہے وہ اتنا رول ہوتا ہے, فیس بک اتنا رول ہوتا ہے کہ اچھے بھلے کا. میں کل ہی ایک ماجد بھائی ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے, آئی سیڈ میں نے 2 سال پہلے یہ ویڈیو دیکھی تھی, اور 2 سال کے بعد آپ, ہم اپنی غلطیوں کا بھی کرتے ہیں. ملیہ لودھی صاحبہ نے یونائٹڈ نیشن میں ایک تصویر دکھا دی اور انہوں نے کہا کہ یہ تصویر جو ہے وہ کشمیری بچے کی تصویر ہے, حالانکہ وہ کشمیری بچے کی تصویر نہیں تھی, وہ پیلسٹینین بچے کی تصویر تھی, پیلسٹینین کی تصویر تھی. یعنی اگر ہم سوشل میڈیا سے ان چیزوں کو لے کے, اس میں کیا ہوا, ان ریٹرن کیا ملا, جگ ہنسائی کس کی ہوئی, حالانکہ انڈیا نے بھی یہ غلطی کی تھی اس سے پہلے, ہمارے پاس وہ فوٹیج بھی ہے, مگر ہماری ایک سرکاری, میں دوسرے کی بات ہی نہیں کرتی, ہم اپنی غلطی کی بات کرتے ہیں کہ ہماری اپنی سرکاری افسر نے اتنی بڑی غلطی کی کہ بنا تصدیق کے سوشل میڈیا سے وہ تصویر اٹھا کے انہوں نے وہ دکھا دی, جس میں حالانکہ ہمارا موقف درست تھا. آج کنگنا رناوت نے کیا کیا, اس نے بھی اپنے گھر کے ٹوٹنے کو اگزامپل دی ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہوگا. میں امیجن کرتی ہوں کشمیر میں کیا ہو رہا ہوگا. تو ملیہ لودھی کی اس چھوٹی سی غلطی نے ہمارے موقف اتنا اسٹرانگ تھا اس کو ویک کر کے رکھ دیا. دیٹ از फिफ्थ जनरेशन, यानी उस प्रोपेगंडे में हम खुद इतनी बुरी तरह से इन्वॉल्व हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही। ये जो बैटल्स थी, बैटल्स तो वो थी ना जब फौजी आमने सामने आके लड़ा करते होते थे, ठीक है, यानी बैटल्स जिसमें बराह रास्त लड़ाई होती थी, जबकि वॉर बहुत मफहूम में इस्तेमाल होता है, दो टू वर्ड्स, बैटल एंड वॉर। दिमागी तौर पे भी आप जंग लड़ सकते हैं, एक जंग ये भी है कि आप मियां बीवी हैं, छोड़े बड़े मुल्कों की बात को छोड़े, मियां बीवी हैं, शोहर बीवी को कोल्ड शोल्डर देना शुरू कर देता है, यू नो व्हाट, जो बात उसको सुननी है वो सुन लिया, जो नहीं सुननी उसको इग्नोर करके वो अपनी किताब ही पढ़ रहा है, दैट इज अ वॉर, कोल्ड वॉर। यानी हार्डवेयर की वॉर इज अ वॉरफेयर जो बैटल ग्राउंड पे होता है, और ये जो लड़ाई है जो हम कोल्ड वॉर कहते हैं, सॉफ्टवेयर की वॉर है, लॉबिंग की जाती है, प्रोपेगंडा किया जाता है, सफारती। अभी इंडिया के जो एक मिनिस्टर हैं, ही वेंट टू रशिया और रशिया का उनका अनाउंस्ड टूर था, मगर रशिया से निकल के रादर देन कमिंग बैक टू इंडिया ही वेंट टू ईरान, बिकॉज ऑफ कोर्स ईरान में इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी, मगर ईरान अब अपने 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 रास्ते से उखड़ गया। तो मनाना तो यार को मनाना तो जरूरी है ना, लॉबिंग की जाएगी। अभी इसराइल के साथ क्या हुआ, ताल्लुकात कैसी हुई, लॉबिंग हुई ना, सॉफ्टवेयर। इस बैटल की या तो वॉर नहीं या बैटल असर रसूख, यानी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया गया। फिफ्थ जनरेशन की सादा तारीफ यह है कि यानी पहले माइंड्स को के जरिए शिकस्त दी जाती है और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा हार्डवेयर, यानी बैटल होगी। पहले दिमागी जंग होगी जिसमें लॉबिंग की जाएगी, सफारतकारी को इस्तेमाल किया जाएगा, ये सोशल मीडिया के जरिए मेरी और आपकी सोच को तब्दील किया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर बैटल होगी। अभी आपको पता है उस खिलाड़ी के बारे में, ये जो जोकोविच जिसने गेंद मारी है, हुआ क्या था कि जोकोविच ने जब गेंद मारी ना, तो जो उसका ओपोनेंट खिलाड़ी था, ही वॉज अ अननोन प्लेयर, और वो कहता है कि जब ये सारा वाकया हुआ ना, तो उसने अपने आप को खेल की तरफ मबजूल, क्योंकि वो जीत रहा था ना, तो उसने खेल की तरफ अपने आप को मबजूल कराने की कोशिश की कि ऐसा ना हो कि उसको देखने के बाद मेरा अपना माइंड प्लेग्राउंड, उसका मैं इंटरव्यू सुन रही थी, कि आप इर्द गिर्द के हालात को देख के मेरा अपना दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर जो भी हो। बहरहाल फिफ्थ वॉर जनरेशन कि कौन कौन से हथियार हैं, जहाज हैं, टैंक, मिसाइल, सिर्फ ये नहीं, ये लास्ट स्टेज होगी, दिस विल बी द लास्ट स्टेज, जहाज, मिसाइल, टैंक, बॉम्ब्स विल बी द लास्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है, रेडियो, टेलीविजन, अखबार, सोशल मीडिया, टू चेंज आर माइंड्स। कौमी तरानों के बोल बदलने के बाद आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी को डिफेम करना, देर आर पीपल जो डिफेम कर रहे हैं मुझे और आपको, किस ग्राउंड के ऊपर, कि पाकिस्तान में भूख खत्म नहीं हो रही और जी वो आर्मी को पैसा दे रहे हैं। तो भाई आप कंपेयर करें, बाकी ममालिक कितना पैसा आर्मी को दे रहे हैं, वी हैव टू सेव आवर सेल्फ। तो फर्स्ट पोर्शन सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, फिल्में, ड्रामे। अब तैयब उर्दुगान क्या कर रहे हैं, वो ड्रामों के जरिए पे अपनी कौम को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उठो भाई उठो, एक दफा पहले भी उठे थे, अब फिर उठो। बहरहाल वो कहते हैं कि पहले मरहले में फौजी छावनी तंसीब के बल्कि मुआशरे में मौजूद लोगों के अजहान को चेंज किया जाएगा, फॉल्ट लाइनर्स को तलाश किया जाएगा। अच्छा, हर आदमी मेरे जैसा नहीं है जो हर आदमी आसानी से मान जाएगा, या जिसका माइंड चेंज हो, जिसकी फेवर्स गवर्नमेंट्स की तरफ होंगी, वो आसानी से मान जाएगा कि हाँ जी बात जी, फलाम आदमी तो मुसलमान है ही, मैं ही मुसलमान हूँ। वहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, वो उस वीडियो को आगे भेजेगा और चार लोगों के और के दिलों में भी नफरत पैदा हो जाएगी। روایتی جنگوں کے مختلف ایکٹرز کے درمیان کوآرڈینیشن ضروری ہوتی ہے, لیکن ففتھ جنریشن میں کوآرڈینیشن ضروری نہیں ہے. نو, سو لوگوں کے پاس پیغام جائے گا, سو میں سے تین نے اپنا رول پلے کر دیا, بلے بلے, دیٹ از دیئر سکسیس اسٹوری. بہرحال ہدف ایک ہی ہے. ہدف کیا ہے؟ جسٹ ٹو ڈس انٹیگریٹ, جسٹ ٹو لوگوں کے دماغوں کو خراب کرنا, معاشرے میں انتشار پیدا کرنا, دیٹس آل واٹ اٹ از. اور تین لوگ بہت ہوں گے اس کام کے لیے. اس جنگ میں ملک کی ریامہ پر اثر انداز ہونے والے عناصر اور اداروں پر خاص طور پر دو. کون سے عناصر ہیں یہ والے؟ ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, ینگ جنریشن فلمیں دیکھتی ہے, گیت سنگیت ہو سکتے ہیں, اخباریں ہو سکتی ہیں جن کو پڑھنے کا شوق ہے, ریڈیو پروگرام ہو سکتے ہیں, شاعر بھی آف کورس. فیض احمد فیض کے کلام کو میں, آپ کو پتا ہے انڈیا میں فیض احمد فیض کو بین کر دیا گیا. انڈیا میں جتنے لوگوں نے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے اس پوم کو پڑھا, انہوں نے ان کو اتنا ٹارچر کیا. ڈو یو نو دیٹ از بینڈ؟ زندہ معاشرہ, جاگتے لوگ ہیں. ہمارے شاعر ادیب ذہن سازی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. عام ترین مذہبی رہنما آئی اے صاحب, اور میں نے ابھی آپ کے ساتھ میسج شیئر کیا کہ دا فرسٹ ٹول پاکستان میں اب یہ مذہبی رہنماؤں کو استعمال کرنے کے بعد, وہ کسی نے پوچھا نا, آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ مولانا فضل الرحمان صاحب, ہی از اے ونڈرفل مین, بلانگ ٹو اے گڈ فیملی. مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھا, مولانا صاحب یہ آپ جو گاڑی چلاتے ہیں, ایک کروڑ کی گاڑی ہے, آپ کیسے چلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا 20 لاکھ اسٹوڈنٹ ہے, 5-5 روپے ایک اسٹوڈنٹ دے تو میں یہ گاڑی, انہوں نے مجھے لے کے دے دی, تحفے میں دیے انہوں نے گاڑی. ڈو یو بلیو اٹ؟ Somebody must have funded that car. اور اب کہا جا رہا ہے کہ آپ فنڈ کریں لوگوں کو توڑنے کے لیے. سب سے بڑا, میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں آپ کو لے کے چلی جاتی ہوں. سلطان صلاح الدین کی ایوبی کے دور کے بیچ میں مساجد میں ان علماء کو نامزد کیا جاتا تھا جو حقیقت میں مسلمان نہیں تھے, they were not Muslims. بادشاہوں کے, ابھی سعودی عربیہ نے ایک عالم ہے جن کو کے لیے پھانسی کا حکم دیا ہے. کیا کیا اس نے؟ ایم بی ایس کے اگینسٹ اس نے بیان دیا تھا. محمد سلطان صلاح الدین یوبی کے دور میں مساجد کے بیچ میں بے شمار ہمارے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کے دور میں لوگوں کا اسکول آف تھاٹ چینج کرنے کے لیے, لوگوں کی ٹرین آف تھاٹ چینج کرنے کے لیے مسجدوں میں ان علماء کو بھرتی کر دیا گیا جو اس قانون کی طرف لوگوں کو لے کر چلنا چاہتے تھے جو وہ چاہتے تھے. آپ ہسٹری کو دیکھ لیجئے گا. اس وقت ففتھ فور جنریشن میں اگر پاکستان پہ متاثر ہو رہے ہیں تو ہمارے مذہبی رہنما سب سے امپورٹنٹ ہیں. اس کی بات کو کروں گی مگر اس پوم کے ساتھ میں پروگرام کو ختم کرتی ہوں. جناب اسد صاحب کی یہ پوم ہے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی ریلیجیس لیڈر, نو, مگر میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ جس شاخ پہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وی ہیو ٹو تھنک ٹوائس فار ایوری تھنگ. دس از 20th century. Life is totally changed. تو دو بدو لڑائی بعد میں ہوگی, پہلے ہمارے مورال کو توڑا جائے گا. آج امریکہ بھی یہی سفر کر رہا ہے. مائیکل کوہن نے کیا کیا؟ کتاب لکھ لی, مگر اس کتاب کو پڑھیے گا, وہ کہتے ہیں کہ he was a great admirer of ولادیمیر پوتن. اسد, ڈاکٹر اسد لکھتے ہیں کہ فرد نہیں وہ سوچے کوئی, جس نے دل میں نفرت بوئی, کیا تم نے اس کو سوچ کو پکڑا, کیا تم نے اس سوچ کو پکڑا, اس پر کوئی دفع لگائی, یا پھر چار کو پھانسی دے کر تم نے اپنی جان چھڑائی. جب تک سوچ نہیں بدلو گے دہشت گردی ختم نہ ہوگی. پاکستان نے سب سے بڑی پرائس پے کی ہے دہشت گردی کی. جب تک سوچ نہیں بدلو گے دہشت گردی ختم نہ ہوگی. کیا کوئی تاریخ یہاں پر میرے خون سے رقم نہ ہوگی, لاکھوں کو تم پھانسی دے دو, لاکھوں ایسے اور ملیں گے دہشت گرد نہیں بدلیں گے. یہ آج کے دور میں نہیں, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا کہ بچوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا, ان کو برین واش کیا جاتا تھا, جنت میں جانا تو یہ کرو, लाखों को तुम फांसी दे दो, लाखों ऐसे और मिलेंगे, दहशतगर्द नहीं बदलेंगे। मदरसे इस सोच के दाई, बच्चों तक है उनको रसाई, उनसे तिफले काम को ले लो, मुल्ला से इस्लाम को ले लो। मेरे तमाम मैं आई एम प्राउड टू से कि हमारी मसाजिद के बीच में, जो यहाँ पे कई मसाजिद के बीच में जो हमारे उलमा है, मगर बाज़ जगहों में वो उलमा भी बेचारे अपनी तनख्वाहों के चक्कर लाले में पड़े हुए हैं, हालांकि दे आर लर्नड पीपल, दे आर वेरी लर्नड पीपल। अपने आप को खालिस कर लो, फिर से खुद ही कलमा पढ़ लो। ये तो दीन मोहब्बत का है, पाक नबी की रहमत का है, इससे खून की होली कैसी, नफरत वाली बोली कैसी। तुम ये पे कुफ्र का फतवा होगा, शहर में तू भी रुस्वा होगा। खुद पे ये इल्ज़ाम को ले लो, मिल सब इस काम को ले लो। और जो लोग हमारे दरमियान तफरीक फैला रहे हैं, देर आर फ्यू थिंग्स, सबसे बड़ा क्रिएटर द जज अल्लाह सुबहाना उताला, ये दुनिया का फैसला उसके इख्तियार में है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, यकीनन गलतियां बहुत सी हुई होंगी, मगर आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग द फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर।
इसको कंप्लीट कीजिएगा कल ज़रूर।
इजाज़त दीजिएगा, आई लव यू ऑल।